सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम चर्चा कर रहे थे भोजन की, कि भोजन की शुद्धता क्यों आवश्यक है। कई वनस्पति शास्त्रियों ने इस बात पर शोध किया है, उन्होंने कुछ पौधों के पास कुछ म्यूजिक सिस्टम लगा दिए, बहुत अच्छे संगीत वहां पे बजाए गए और कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया। और कुछ मास के बाद जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि जहां सुंदर संगीत चल रहा था उनकी वृद्धि बहुत अच्छी हुई, लेकिन जहां कोई संगीत नहीं था वहां पे उनकी जो गति थी, वृद्धि थी, वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि वनस्पति भी हमारे वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। कई बार तो उन्होंने संकल्पों के ऊपर भी प्रयोग किया और ये पाया कि जहां पे अच्छे विचार दिए जा रहे हों वहां पे वृद्धि अच्छी होती है, और जहां बुरे विचार किए जा रहे हों वो या तो सड़ जाते हैं या उनकी वृद्धि नहीं होती है। तो जब हम अन्न की बात करते हैं तो वास्तव में हमारे मन के विचार बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं कि किन विचारों में ये भोजन बनाया जा रहा है। शायद यही कारण है कि कल भ्राता जी हमारे साथ बहुत गहराई से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अन्न बहुत शुद्ध होना चाहिए जो वास्तव में आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और मेडिटेशन करते हैं उनके लिए। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है आज की कड़ी में। राता जी, कई प्रकार के हमारे पास रिस्पॉन्स आए हैं, विचार आए हैं। कईयों ने ये कहा कि प्याज लहसुन के बिना खाने में तो कोई मजा नहीं आता, और कईयों ने ये कहा कि हमने छोड़ा था लेकिन फिर वो शुरू हो जाता है, ये बात। और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि जब हम बाहर जाते हैं उस समय सचमुच जो मुद्दा आपने उठाया है, उन्होंने कहा कि हमें इस पे प्रकाश की जरूरत है, हम बाहर जाते हैं तो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते।
हमारे साथ हुआ एक बार, हम हरिद्वार में गए तो मेला जबरदस्त था, कुंभ चल रहा था, हमारे जो प्रोग्राम थे उस तक हम जा ही नहीं पाए थे, इतनी भीड़ थी, गाड़ियां जा नहीं सकती थी जी। तो हमें लगी भूख, हम 5-7 थे तो वो जो थे दूसरे तो हमारे रिलेटिव थे, गृहस्थी थे, परेशान हो गए, बहुत भूख लगी, एकदम मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्या करें। मैंने कहा चलो दुकान पे चलते हैं, तो एक दुकानदार था, उसको हमने बताया कि देखो हमारे नियम है, और उसके पास यही सब बिक रहा था खाने पीने की चीजें
जी, जी।
तो उसने हमें ऐसी ऐसी चीजें दे दी कि जो मशीन मेड थी, कहा इसको कोई आदमी देखता भी नहीं, आप मजे से इसको खाइए। वो हमारी बातों को समझता था, वो भी एक अच्छे किसी सत्संग से जुड़ा हुआ था। हम पेट भरा और सब बड़े खुश हुए कि अरे तो अच्छा मार्ग हमें मिल गया। तो आजकल बाजार में भी कई चीजें ऐसी उपलब्ध हैं कि किसी मनुष्य को भूखा रहने की जरूरत नहीं। जो आप प्लांट्स की बात कर रहे थे ना, मुझे एक बात याद आई, हर व्यक्ति इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। एक अच्छे व्यक्ति के घर में एक तुलसी का पौधा लगा दिया जाए, और अभी अपने को कोई पापी तो समझेगा नहीं, पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, थोड़ी अशांति रहती हो, उसके घर में बाहर लगाए, कोई ऐसे ही बाहर वाला लगाए, दूसरा थर्ड पर्सन लगाए, दोनों को समान रूप से पानी आदि दे, सब कुछ दे, खाद जो भी डालनी, और फिर देखे दोनों की ग्रोथ में क्या अंतर होता है। वाइब्रेशंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है। तब तक हमारी ये ग्रामीण विकास सेवा का जो जोरदार प्रोग्राम है नहीं शुरू हुआ था, तो हम स्पार्क के अपने माध्यम से ये सब करते थे, और मेरे पास क्योंकि सब्जेक्ट था पावर ऑफ थॉट का, आपको याद हो, तो हमने ये शुरू कराया था कि फसलों पर इसके प्रयोग कैसे किए जाए। तो एक किसान ने बड़ा अच्छा किया, ये बहुत ही सुंदर ये प्रयोग था, इसके एक्सपीरियंस, इसका रिजल्ट कितना वंडरफुल था वो आप सुने। तो उसके घर में ही एक जामुन का पेड़ था, उसने रोज 15 मिनट जामुन के पेड़ को दोनों हाथ लगाकर वो खड़ा हो गया और 15 मिनट तक अभ्यास किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और अभ्यास किया ऊपर परम पिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उनकी किरणें मुझे आ रही हैं और मेरे हाथों से पेड़ को जा रही हैं। बार बार ये अभ्यास करता रहा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और उसने ये प्रयोग कुछ दिन किया, शायद 3 मास किया था, फिर पेड़ पर वो आ गए, जामुन आ गई छोटी, और बढ़ने लगी। जामुन का साइज मोटा हो गया, जामुन बहुत मीठी हो गई। और आश्चर्यवत बात थी, उसने ये सभा में सुनाया था अपना अनुभव, 6 मास तक जामुन चलती रही, पकी हुई तोड़ते रहे, नई आती रही, और सारा गांव को उसने बांटी, क्योंकि गांव में बेचने का तो सिस्टम होता नहीं, वे टोकरा भर के तोड़ ली गई, खाओ जिसको खाना है, गांव में तो ऐसे ही होता है। तो सारे गांव में आश्चर्य था, पूछते थे तुमने इसमें गुड़ का पानी डाला है क्या, कहा नहीं। तब उसने बताया कि वाइब्रेशन से, कैसे योग के वाइब्रेशन से पेड़ पौधों पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। तो ये कोई माने या ना माने, इसमें इस सद सत्य सिद्धांत को झुटलाया नहीं जा सकता कि हमारे वाइब्रेशंस को ये प्रकृति बहुत
ग्रहण करती है, और जब हम भोजन बनाते हैं तब भी इसका प्रभाव होता है।
छोटा सा प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है, 2 गिलास में पानी ले लें, 1 गिलास को दृष्टि डाल के बहुत अच्छे संकल्प करें, पानी तुम तो जीवन हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम न होते तो संसार न होता, तुम न होते तो फसल न होती, तुम न होते तो जीवन ही न होता, मनुष्य प्यासा कैसे जीता, उसको गुड वाइब्रेशंस दे दे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी को प्यार की फीलिंग दे, प्योरिटी की फीलिंग दे, 1 गिलास को, 2 गिलास को ऐसे देखते हुए, दृष्टि देते हुए संकल्प, पानी तू कितना गंदा है, तुमने कितनों का विनाश कर दिया है, तुम बाढ़ ले आता है तो सारा सत्य नाश कर देता है, सागर में तुम पानी है, सारा विषैला जहरीला नमकीला है, क्या क्या तुम करता रहता है, बिल्कुल बेकार है, तुम ना होता तो कितना अच्छा होता, ऐसी कुछ बुरी बुरी बातें 2-4 गाली दे के पानी को, दोनों गिलास को रख दिया जाए, 3 दिन रख दो, 5 दिन रख दो, 5 दिन रख दो, और देखो जिस पर गलत वाइब्रेशंस गए उसमें निश्चित रूप से कीड़े पड़ जाएंगे, और जो जिस पे अच्छे वाइब्रेशन दिए वो एज इट इज रहेगा, मिनरल वाटर बन जाएगा। और ये प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मन के वाइब्रेशंस का भोजन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बाकी ऐसा हो गया है कि कोई लहसुन प्याज नहीं खाता और अचानक कहीं खाना पड़ गया, तो कोई ऐसी मुसीबत भी नहीं कि एक बार खाने से कोई सारा धर्म कर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दृष्टि दो,
जैसे आपने आपद धर्म की बात की थी, उसके अनुसार यदि कहीं ऐसी आपदा आ गई जहां कुछ भी नहीं है, तो उस समय जैसे आपने आपद धर्म वाली बात कही है, तो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है इसे पूरी कट्टरता के साथ, ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल प्राण ही त्याग दें और इन चीजों को ग्रहण
और ना करें। रही बात स्वाद की, देखिए तो बनाने वाले पर है और खाने वाले पर है, लहसुन प्याज क्या कुछ भी पड़ा हो और मन में टेंशन हो
जी,
तो खाना कुछ लगेगा ही नहीं, स्वाद तो छोड़ो, उसको ये पता नहीं चलेगा उसने खाया भी है कि नहीं, ज्यादा खा लेगा या खाया नहीं जाएगा, और मन प्रसन्न हो तो अचार और रोटी में भी वो स्वाद आता है कि बात मत पूछो। इसलिए मन में यदि स्वाद है तो भोजन में स्वाद होगा।
अब एक बात भ्राता जी, जो हमारे कुछ और भाइयों ने पूछा है वो ये कि कईयों में ये रहता है भ्रम, तो क्या कहें, ये सत्य ही है कि हम ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो हमें मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जिस चीज का हम अभी आनंद ले रहे हैं, तो कई बार ये चीज भी व्यक्ति को यहाँ आने से, आध्यात्मिक विद्यालय में आने से रोक देती है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या वो ये लेते हुए भी क्या ब्रह्मा कुमारी से नहीं आ सकते?
आज ही एक फोन कॉल मेरे पास आया किसी माँ के 2 बच्चे दोनों युवक कहा शराब पीने लगे हैं बहुत ज्यादा, दोनों को डायबिटीज भी है। तो मैंने कहा है टेंशन बहुत रहती है क्या, कि हाँ बस काम काज में बहुत टेंशन जो आई तो शराब की आदत लग गई, और अब ऐसी आदत लग गई कि छूटती नहीं। अब उन्हें बता दिया गया है कि डायबिटीज से शरीर के अंग वैसे ही वीक पड़ जाते हैं, ऊपर से शराब, किसी ने बता दिया ये 5-7 साल में तुम्हारे दोनों बच्चे जाएंगे, अब माँ का हाई ब्लड प्रेशर हो गया ये सुन के, और सत्य है। तो देखिए ये जो व्यसन है ये जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ना, सब देख रहे हैं इससे सब कुछ नष्ट हो रहा है। शराब पीने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई, वो सोचते हैं टेंशन बहुत है, शराब पी लो सो जाओ थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उससे ब्रेन वीक होता जाएगा और छोटी बात डबल टेंशन देगी, फिर डबल
एक आम मानसिकता हो गई है। व्रता जी आपको बीच में रोक रहा हूँ क्षमा लेते हुए, कि एक आम मानसिकता ये कि चलो यदि मेरी 60 साल की उम्र है कोई बात नहीं, मैं 55 में ही चला जाऊंगा 50 में चला जाऊंगा लेकिन एंजॉय तो करके जाऊंगा,
लेकिन जो पीछे वाले उनका एंजॉयमेंट तो खत्म हो जाएगा ना, उसके बच्चे रोते रहेंगे, पत्नी जीवन भर आंसू बहाएगी और अगर माँ जिंदा है वो तो पागल ही हो जाएगी कि मेरे बच्चे चले गए। तो देखिए जो बुरी चीज है वो तो बुरी है, हमें कुछ चीजों को सच्चे मन से बुरा मानना ही पड़ेगा, ये हमारी विवेकशीलता है। शराब कोई सब पीने लगे, अब मान लो एक बाप शराब पी रहा है, एक ये भी एक सच्ची कहानी है, उसका बेटे ने देखा बाप तो शराब पीता है मानता नहीं है, वो बोतल ले गया बाप के पास सामने और उसके सामने पी, वो उसको रोकने लगा तुम न पियो, तुम क्यों ना पियो, आप जो पीते हो आप हमारे पिताजी हो,
अच्छी चीज होगी
तभी तो पी रहे, हम क्यों ना पिए। तब उसको समझ में आई कि सचमुच अच्छी नहीं है। तो देखिये जो रोज पी रहा है वो अपने बच्चों को पीना नहीं देने चाहता, कहीं कहीं आजकल ऐसा भी हो गया, कल्चर ऐसी हो गई कि सब इकट्ठे बैठ के पीते हैं, पत्नी पीती है तो बच्चे,
लेकिन ये केवल मेट्रोज में होगा बेटा जी, हमारी भारतीय संस्कृति तो इस चीज को इजाजत
नहीं देती। आजकल थोड़े ज्यादा सभ्य लोग जो कहलाए जाते हैं ना रॉयल, मैं तो कहूंगा बिल्कुल अनरॉयल हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, उनके यहाँ हो गए। तो ये बुरी चीज है, और अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ये छोड़ दिया है तो ये बहुत सुखद समाचार है, हमारी सरकारें भी प्रसन्न होंगी, हमारे सोशल वर्कर भी प्रसन्न होंगे, हमारे तो गांव गांव में अभियान चलते हैं और हमारे युवक जाकर सभी को इनसे छुड़ाने की ना देते हैं, हमारे यहाँ दवाइयों का प्रचलन हो गया है उससे भी छूटते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कहा कि वो भी लेते रहे ये भी करते रहे, देखिए ब्रह्मा कुमारी माना सीधी भाषा में मैं कहूंगा भगवान से मिलना, ब्रह्मा कुमारीज के डिसिप्लिन्स पर चलना माना आत्मशुद्धि करना, जीवन को सुख शांति से भरपूर करना, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है सुख शांति, एक बहुत बड़ी प्राप्ति है तनाव मुक्त जीवन। तनाव मुक्त जीवन शराब पीकर करें या मन की प्रसन्नता और मन की शक्तियों से करें, ये विचारणीय बात है। शराब पी के जो तनाव मुक्त मनुष्य होगा वो थोड़े समय के लिए होगा, अगले दिन जब सवेरे जगेगा तो तनाव डेढ़ गुना बढ़ा होगा, ब्रेन की शक्ति कमजोर होगी और जो नई बात आज सामने आएंगी जो तनाव देती है उससे तनाव डबल होगा, फिर मनुष्य डबल शराब पिएगा और इस तरह जीवन को नष्ट करेंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद, ज्ञान योग सीखने के बाद मनोबल इतना बढ़ेगा, बुद्धि की स्वच्छता इतनी बढ़ेगी, हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व इतना बढ़ेगा कि हम स्वतः ही टेंशन को मैनेज कर पाएंगे और जीवन खुशहाली से भरेगा और शराब से तो बदबू आएगी।
लेकिन भ्रता जी आजकल लोगों का मानना यह है कि ये तमाम चीजें, चाहे ये बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है या फिर शराब है, मांसाहार है, ये हमें आनंद देता है, ये हमें सुकून देता है, ये हमें सुख देता है, हम उसके लिए ले रहे हैं, यदि हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो हम जैसे उस सुख से वंचित हो जाएंगे। तो क्या ब्रह्मा कुमारीज में इससे कहीं ज्यादा बड़ा आनंद और सुख है जो इसे छोड़ा जाए?
देखिए आनंद शब्द जोड़ा गया है वो गलत है, आनंद एक स्पिरिचुअल शब्द है, परम आनंद स्पिरिचुअलिज्म की टॉप मोस्ट स्थिति है। जब एक योगी एक साधक अपने मन को शांत करता हुआ, सुंदर विचारों से उसको भरपूर करता हुआ, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है लंबे काल के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है लंबे काल के लिए, वो जो अनुभूति होती है जिसमें सुख भी समाया होता है, खुशी भी समाई है, पवित्रता समाई है, ईश्वरीय खुमारी समाई है, इन सब को मिलाकर जो अनुभूति है उसको कहते हैं परम आनंद, जिसमें मनुष्य के संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं, उसे संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं रहती और ये व्यसन तो स्वतः ही उससे कोसों दूर चले जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जो लोग बहुत अच्छी योग साधना करते हैं, सबकी बात नहीं, कई तो जुड़ते हैं संघर्षों में रहते हैं, जिनका मेडिटेशन होता नहीं या वो करते नहीं उनकी बात नहीं, जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं ऐसे हमारे यहाँ लाखों नहीं तो कई हजार लोग हैं, कई हजार, और ऐसे अच्छे हजारों साधक जो अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, इस परम आनंद को अनुभव कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में ये आनंद नहीं है, ये तो क्षणिक सेटिस्फेक्शन होता है, और वो क्षणिक सेटिस्फेक्शन मन उसको गिरावट में ले जाता है। जैसे स्मैक लेने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो ये कहते हैं जरा सा चखा और आनंदित हो गए, आनंदित नहीं होते वो, एक दूसरी फीलिंग होती है जो ऐसा बना देती है उनको कि फिर न लें तो वो फीलिंग नहीं, उसको वो भिन्न भिन्न नाम दे दिए, क्योंकि आनंद शब्द प्रचलित है, इसको उन्होंने नाम दे दिया, पर आनंद और अतीन्द्रिय सुख ये तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में और परमात्मा के स्वरूप में स्थित।
खैर ये तो वो भी अनुभव करते हैं बाद में भ्राता जी, कि हमने लिया उस समय तो क्षणिक हमें ये चीजें प्राप्त हुई, लेकिन बाद में तो हमें और ज्यादा तकलीफ होती है, ये तो अनुभव करते हैं। और अध्यात्म का जो आनंद है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भ्राता जी आजकल लहर ऐसी है, चाहे वो मीडिया के द्वारा दी जा रही है, फिल्मों के द्वारा दी जा रही है, या अपने आसपास के वातावरण, जैसे आपने पिताजी की बात कही कि पिताजी खुद ही इन चीजों में रहते हैं, टीचर्स को देख लो तो शायद कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों, तो जहां कहीं भी ये सब चीजें देख रहा है व्यक्ति, तो आज का जो युवा वर्ग है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी सोचता है कि अच्छी चीज ही होगी, इसीलिए तो सभी ले रहे हैं।
बिल्कुल, वो तो एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है, दोस्त सामने खड़े हैं हायर एजुकेशन के लिए, एक ये सब कर रहा है, एक नहीं ले रहा तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी, वो भी कहेंगे तुम भी क्या आदमी है, क्या सन्यासी बन गया, क्या कर लिया ये अभी से तुमने, तुम भी लो, और वो सोचेगा मैं तो अलग थलग पड़ गया हूं, इसलिए पीने में ही भलाई है, और इस तरह वो व्यसनों के अधीन हो जाता है। लेकिन इसमें कोई सच्चा सुख नहीं। मुझे कईयों के अनुभव हैं, कोटा में स्मैक का शिकार हो गया विद्यार्थी, माँ बाप ने उसकी सारी पढ़ाई कोचिंग वोचिंग छुड़ा के उसे घर ले गए, अब वहां तो कोई स्मैक थी नहीं, और वो पागल जैसा रहने लगा, क्योंकि वो गंदी आदत चाहे उसने 10-20 बार ही ली थी, वो ऐसी हो गई कि बिल्कुल उसके बिना वो डेड और पागल, और लोग उसके चेहरे को देखे इसको क्या हो गया है, मुश्किल से डॉक्टर्स ने उसको नॉर्मल किया, अब उसकी पढ़ाई भी छुड़ा दी गई, कहा आप खेती में लग जाओ, हल चलाओ, इधर से कहीं जाना नहीं है, नहीं तो तुम्हें खत्म कर देंगे, तो जीवन बर्बाद हो गया ना, कहाँ वो इंजीनियर बनने वाला था, कहाँ मजदूरों जैसा काम करने लगा, तो इन चीजों को समझदारी से
बिल्कुल, लेकिन इसी चीज को समझ नहीं पाता है व्यक्ति, जैसे मैंने कहा ना व्रता जी की एक लहर ही चल रही है, तो हर एक सोचता है कि चलो अच्छी चीज ही होगी, अच्छा नहीं भी होगी तो भी एक ट्रेंड जैसे आपने कहा बन गया है, तो वो व्यक्ति उस चीज को लेता है, एक आदत सी बन जाती
है। अभी हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अच्छाइयों की लहर चालू करें,
वही आ रहा था व्रता जी, क्योंकि अच्छी बातें हैं वो लोगों तक शायद नहीं पहुंच
हाँ पहुंच नहीं रही, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कोई भी क्रांति जब प्रारंभ होती है थोड़े से लोगों से होती है, छोटा सा समूह होता है, कभी कभी तो मनुष्य अकेला ही चला करता है, फिर एक साथी मिलता है, फिर चार मिलते हैं, फिर पांच मिलते हैं, फिर एक समूह बनता है, फिर वो बात फैलती है। हमारे साथ भी यही हुआ है, हमारे पास केवल 400 भाई बहने थे जब कार्य शुरू हुआ, 400 से 4000 हुए, 4000 से 40000 हुए, 40000 से 4 लाख हुए, फिर 40 लाख हुए, अब संख्या बढ़ती जा रही। तो अच्छे लोग, देखिए 100 गंदे लोग हों और एक अच्छा व्यक्ति 100 पर हावी होगा, बदबू हो एक अगरबत्ती उस बदबू पे हावी हो जाएगी, इसलिए अच्छे लोग जरूर नहीं करोड़ों ही होंगे वो या पद्मों हो जाए अरबों हो जाएंगे, अच्छे लोग यदि एक अच्छी संख्या में, माना अगर हमारे देश की जनसंख्या इस समय अगर 1 अरब 30 करोड़ है, तो उसमें से अगर 1 करोड़ भी 130 करोड़ में से 1 करोड़ अच्छे लोग बन जाते हैं, तो वो जबरदस्त क्रांति बाकी सब पर हावी हो जाएगी 129 करोड़ पर। इसलिए हमारा ये अभियान जोर शोर से चल रहा है और इस क्रांति को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत लोग हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजयोग का मार्ग संपूर्ण रूप से अपना लिया, लेकिन ऐसे ही लाखों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो अच्छाइयों को अपनाते जा रहे हैं, जो इन व्यसनों से अपने को मुक्त कर चुके हैं, चाहे वो अभी तक राजयोग के पथ पर पूरे नहीं आए, लेकिन बहुत चीजों से मुक्त हो गए, तो वो हमारी क्रांति में शामिल हैं। और जब ये हमारी संख्या 1 या 2 करोड़ हो जाएगी, संसार में ये जो बुराइयां हैं ये संपूर्ण रूप से,
चलिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भ्राता जी आपको भी और पूरे विद्यालय को, कि जल्दी से जल्दी ये संख्या बढ़ती चली जाए, ताकि अच्छाई समाज में स्थापित हो, स्वर्ग की स्थापना जो विद्यालय का लक्ष्य है वो पूरा हो सके। भ्राता जी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, कई लोग इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, मांसाहार उन्होंने समझ लिया बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, व्यसन बुरी चीज है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
हाँ, देखिए, हमें जो ईश्वरीय ज्ञान में कुछ चीजें प्राप्त हुई और हमारे जो बहुत लोगों के अनुभव हैं, अब वेस्ट बंगाल में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ मछली खाना और नॉन वेज खाना एक आम बात है, मतलब इसका अल्टरनेटिव वहाँ कुछ है ही नहीं, ये खाना ही है सबको। हम वहाँ गए तो बहुत सारे घरों में तालाब बने हुए थे, समझो 10 बाय 10 फुट के, बड़ा गंदा पानी था। मैंने कहा ये कैसे तालाब है, हमने तालाब देखे भाई, नीला पानी, सुंदर एकदम, लोग तैरते हैं, ये क्या बनाए हुए इन्होंने, स्विमिंग पूल है क्या ये? कहा नहीं, ये मछली पूल है, मछली तैरती है इनमें, तो गंदा पानी। तो मैंने कहा इनकी क्या जरूरत थी कि ये इनकी सब्जियां हैं, यहीं से एक मछली निकालेंगे उसको बनाएंगे, शाम को दूसरी निकालेंगे, तो वहां बड़ी नेचुरल सी चीज हो गई है। अब वहां के बहुत सारे लोग अब ज्ञान योग के मार्ग पे चलने लगे, उनको पहले कठिनाई हुई कि भाई ये खाना ही है, अब कोई कहे हम तो नहीं खाएंगे, वहां तो बच्चों की शुरुआत शादियों में और सब कुछ में यही होता है,
शुभ कार्य में भी ये मछली ही भेजते हैं,
ब्राह्मण भी वहां तो यही खाते हैं, गिफ्ट भी यही दे देते हैं दूसरों को। लेकिन हमारे यहाँ आने वाले बहुत इसमें सफल हो गए, उसमें तीन चीजें जो ईश्वरीय ज्ञान में सिखाई गई वो ये है। एक तो सबको बताया जाता है तुम आत्माएं हो, आत्मा मूल रूप में पवित्र है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार करता है, ये महसूस करता है मैं तो आत्मा हूं और पवित्र हूं, तो बहुत सारी इंप्योरिटी हटने लगती है। दूसरा, हमें बताया जाता है कि सतयुग त्रेता युग में तुम देवता थे, लंबा काल तुमने देव रूप में व्यतीत किया, तब तुम बिल्कुल सात्विक सतोप्रधान, ये नॉन वेज शब्द ही नहीं था, ये खाना पीना गंदा है था ही नहीं वहां। जैसे ही किसी मनुष्य को ये स्मृति आती है उसका देवत्व जगने लगता है। और तीसरी चीज जो दोनों से पावरफुल है कि तुम भगवान की संतान हो, वो परम पवित्र है, उसका आदेश है बी प्योर, सात्विक हो जाओ, अब अपने भोजन को सतोप्रधान बनाओ, सात्विक बनाओ, पवित्र बनाओ, ऐसा भोजन खाओ जो भगवान को स्वीकार्य हो, ये मछली ये मांस आदि भगवान को स्वीकार्य नहीं है, ये सबको जानना चाहिए, ये दूर की चीजें हैं, गंदी चीजें हैं। तो जब ये तीन चीजों का आभास किसी को होता है तो ये छूटने लगती है। तो जो चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते उनके लिए ही ये बात मैंने कही, अगर वो इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें बल आ जाएगा, शुद्ध संस्कार जागृत हो जाएंगे और ये अशुद्ध संस्कार स्वतः पीछे हटने लगेंगे, दूसरे भोजन में उन्हें टेस्ट आने लगेगा, स्वतः ही छूट जाएगा।
लेकिन ये अभ्यास तो भ्राता जी सेवा केंद्र पे जाके ही वो कर सकते हैं, और यदि सेवा केंद्र में जाना उनके लिए संभव ना हो तो वहां रहते हुए ही यदि उन्हें ऐसी तलब बार बार उठती रहती है, छोड़ना भी चाहते हैं, तो घर में रहते हुए क्या करें?
घर में रहते हुए भी किया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ अभी टेलीफोन्स भी हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल भी है, नेट पे भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उनका वो फायदा उठा सकते हैं। अभी अभी किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया, दिल्ली में मुझे रिसीव करने आया एक भाई, कहा मैं आरएसएस से भी था और पॉलिटिकल पार्टी में भी मेरा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, मुझे ये सब खाने पीने की बहुत, शराब पीने की बहुत आदत लगी हुई थी, अभी मैंने संकल्प किया ज्ञान लेते ही कि मुझे छोड़ना है। अब पहले दिन बहुत तकलीफ हुई, क्या करूं, मैंने चाय पी कड़क बना के पहले, तो फिर थोड़ी इलायची मुंह में डाली, फिर भी मुझे परेशानी होती रही, मैं इधर उधर घूमता रहा, पर संकल्प था मुझे पीना ही नहीं है, छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया, फिर अगले दिन उसी टाइम मुझे हुआ, फिर मैंने चाय पी, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक रख ली थी वो पी, थोड़े सुगंधित दूध मिलते हैं आजकल ये बोतलों वो पिया, फिर इलायची खाई मिश्री मुंह में डाली, फिर वो टाइम बिता दिया। कहा मैं 7 दिन मेहनत की अच्छी और उसके बाद वो जो तलब होती थी वो खत्म हो गई।
जी जी जी, तो ये भी शायद ये प्रयास और अभ्यास कर सकते हैं कई लोग। प्रताप जी, कई लोग छोड़ना नहीं चाहते लेकिन उनके परिवार वाले चाहते हैं कि ये छोड़ दें, तो ऐसे में भी क्या कुछ समाधान हो सकता है कि भाई घर का जो मुखिया है या बेटा है वो शराब लेने लगा है या सिगरेट या कुछ, जैसे आपने कहा, नशीले द्रव्य ले रहा है, अब वो तो नहीं चाहता छोड़ना लेकिन माँ उनके परिवार वाले चाहते हैं कि ये छोड़ दें, वो क्या कर सकते हैं?
देखिए, इसमें हमारे पास तो दो साधन होते हैं
जी,
एक तो हमारे हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी कॉम्बिनेशन बनाए हैं इनके लिए दवाइयों के, उसको खाने से उस व्यक्ति में डिस्टेस्ट हो जाता है, वो पानी में भी डाल के दे देते हैं, सब्जियों में बहने डाल देती हैं, वो होता है। दूसरा, जो बहने भोजन बनाती हैं वो उस भोजन को पवित्र करें, इस संकल्प से भोजन बनाएं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बार बार याद करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, फिर लास्ट में संकल्प करें इस पवित्र भोजन को खाने से इनका ये व्यसन छूट जाए, तो बहुत अच्छी दृढ़ता के साथ ये सब करेंगे और घर में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे शुद्ध, तो उनको इन चीजों से वैराग्य हो जाए।
जो लोग भ्राता जी इन चीजों का भक्षण करते हैं वो कई बार ये तर्क देते हैं कि भगवान ने जो भी चीजें बनाई हैं वो मनुष्य के लिए ही तो बनाई हैं, खाने पीने के लिए, तो उनके इस तर्क का अध्यात्म क्या जवाब देता है?
देखिए सीधी सी बात है, भगवान ने तो बहुत चीजें बनाई, जहर भी बनाया है तो वो भी क्यों ना खा लिया जाए, बिच्छू भी बनाया उसको भी उठा के खा लिया जाए, सांप को भी लोग खा लेते हैं,
कई देशों
यही मान के चाइना आदि में यही मान के कि भगवान ने शायद हमारे लिए बनाया, पर तुम्हारे लिए सब्जी और शाकाहारी भोजन भी तो बनाया है, इसको तुम स्वीकार कर लो ना, तुम्हारे लिए दूध बहुत अच्छा बनाया है, घी बनाया है, तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान भी तो हैं, उनको सेवन कर लो। तो ये तो क्या है कि मनुष्य अपनी आदतों को, बुरी वासनाओं को जरा एक तर्क दे देता है,
जस्टिफाई करता है,
हाँ कि भाई यही ठीक है, हम जो कर रहे ठीक है, तुम जो सोच रहे वो गलत है, लेकिन हम गंदगी चीजें तो नहीं खा सकते, भी सड़क पे गंदगी बहुत पड़ी है, कुत्ते उसमें मुंह डालते हैं, सुअर मुंह डालते रहते हैं, वो उनका भोजन है, वो मनुष्य का भोजन थोड़ा है, मनुष्य सोचे ये सब हमारे लिए बना है, तो ये मान्यता तो गलत है।
बिल्कुल भ्राता जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आपने दिया है, चर्चाएं तो बहुत गहन हैं, गंभीर भी हैं और विचारणीय भी हैं, हमारे दर्शक भी बिल्कुल इस पे विचार करेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहां तक मांसाहार की बात है तो किसी ने कहा है कि भगवान ने जिन्हें जीवन दिया है उनके जीवन को हमें नहीं छीनना चाहिए। यदि आपके पास अर्थात मनुष्य के पास किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किसी के जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है। यदि हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी के जीवन को छीनते हैं। और जहां तक रही धूम्रपान की बात तो विचारणीय बात है कि एक 2.5 इंच की बीड़ी या सिगरेट 6 फीट के मनुष्य को कैसे अपने वश में कर सकती है। यदि आप इसके वश में हैं तो जरूर विचार कीजिए कि आप बड़े हैं, आप चिंतनशील हैं, वो आपके लिए यदि हानिकारक है तो आपका एक संकल्प उससे आपसे दूर कर सकता है। शराब के लिए भी कहा जाता है कि फर्स्ट मेन ड्रिंक्स द वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स द वाइन, एंड फाइनली वाइन ड्रिंक्स द मैन। शराब अंततः मनुष्य को खोखला बना देती है, नष्ट कर देती है। हम सबके लिए चिंतन का विषय है कि आखिर हमारे लिए भक्ष्य पदार्थ क्या हैं और अभक्ष्य पदार्थ क्या हैं और किस प्रकार वो हमारे तन और मन को प्रभावित कर रहे हैं। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है तो संसार को कुछ देने के लिए दिया है, संसार में कुछ कर गुजरने के लिए दिया है, इसलिए हम अपने जीवन को महानता की ओर ले चलें, ना कि इन छोटी छोटी अभक्ष्य पदार्थों में लगे रहें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।